नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में संतुलन बहाल करना सिर्फ वैश्विक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक वैश्विक तात्कालिक जरूरत भी है। नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने विश्व को स्वास्थ्य संतुलन और समरसता का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3,200 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम होगा। प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करते समय लोक सेवा आयोगों को ईमानदारी और निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को शुरू हुआ 19 दिन का शीतकालीन सत्र आज सम्पन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन करीब 92 घंटे तक चला और 121% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व के मुद्दों पर उत्तम बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके कारण इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। शीतकालीन सत्र में कुल 8 विधेयक पारित किए गए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण पर 4थी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ नगर निकायों की खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए प्रस्तुत कार्य योजनाओं की भी समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गुजरात और तमिलनाडु मतदाता सूची का आज मसौदा जारी किया। इस मसौदा सूची में गुजरात के लगभग 4,34,00,000 मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है। वहीं तमिलनाडु में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे में 5,43,76,755 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया है। ये पर्यवेक्षक 16 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों की बारीकी से जांच करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के निकटतम संबंधों के लिए नीदरलैंड्स के समर्थन और मुक्त व्यापार समझौते के समापन को महत्व देता है। डॉ. जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों की आलोचना करते हुए इसे लूट करार दिया है। आज अपने वार्षिक प्रश्न उत्तर सत्र और वर्ष के अंत में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन ने कहा कि ये जब्ती खुलेआम की जा रही है और चेतावनी दी कि इससे यूरोजोन में विश्वास कमजोर होगा। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद आज ढाका और बांग्लादेश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हादी की मौत कल रात सिंगापुर में उपचार के दौरान हुई थी। जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी और मेमनसिंह में भी राजमार्ग जाम किए गए, जबकि सेंट्रल ढाका में घंटों तक यातायात ठप रहा। हादी के शव को वापस लाने से पहले सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया है। भारत के दिए 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।